الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون وقال تعالى أولم نعمركم من يتذكر فيهم من تذكر وجاءكم النذير وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل حرمك وصحتك قبل سقمك وغناءك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس میں عام طور پر وہاں رمضان المبارک کے اندر مغرب کے بعد ہوا کرتی تھی. کبھی کبھار اکبر الہ آبادی کا یہ شعر بڑی لئے کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. حضرت فرماتے تھے کہ اگر یہ جو گھنٹے والی گھڑی ہوتی ہے، الارم ٹکورے بجتے ہیں اس میں، کہ گویا ہر گھنٹے کے اوپر وہ گھڑی آپ کو یہ خبر دے رہی ہے کہ آپ کی عمر کا ایک حصہ ختم ہو گیا. حضرت فرماتے تھے کہ آدمی غور کرے تو گویا وہ جو घंटी बजती है उसमें घंटे, वो घटा दी घटा दी घटा दी, गोया ये कह रही। हकीकत तो ये है कि हमारी ज़िंदगी जो है वो हमारे हाथ से निकली चली जा रही है। हज़रत ख्वाजा अज़ीज़ुल हसन मजज़ूब रहमतुल्लाह अलैह हो रही फरमाते हैं, हो रही है उम्र मिसले बर्फ़ कम, चुपके चुपके रफ्ता रफ्ता दम बदम, जैसे बर्फ़ होती है ना पिघलती जा रही है। हमारे हज़रत रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, एक आदमी बर्फ़ बेच रहा था और आवाज़ लगा रहा था, ले लो उस आदमी का सरमाया जो हर वक्त कम होता जा रहा है। एक बुज़ुर्ग ने सुना कि इसने तो ज़िंदगी को बहुत अच्छी मिसाल पेश कर दी, हमारी ज़िंदगी जो है बर्फ़ की तरह है, जैसे किसी के पास सरमाए के तौर पर बर्फ़ हो तो बर्फ़ क्या होती है, वो फरोख्त न हो तो भी अपने तौर पर पिघलती चली जा रही है, जितना जल्दी वो उसको बेच कर उस बर्फ़ के बजाय पैसों की शक्ल में उसको कन्वर्ट कर लेगा वहाँ तो महफूज हो जाएगी, और नहीं तो वो पिघल करके ख़त्म हो जाएगी। इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी के अवकात हैं, गुज़रते चले जा रहे हैं। हम इन अवकात के अंदर आमाल सालेहा करके इन अवकात को जो है अमल साले की शक्ल में बदल करके अपने लिए आखिरत का ज़खीरा बना लें तो फिर वो हमारे काम की चीज़ है। हमारी एक एक सांस जो है बड़ी कीमती है। हमारे हज़रत मुफ्ती साहब नवर अल्लाह मरकदहु शेर पढ़ा करते थे, तेरी हर सांस नखले मूसवी है, ये मद्दो जज़्र जवाहिर की लड़ी है। ये हज़रत मूसा अला नबीना वाली सलातो वसलाम को जिस दरख्त के अंदर से अल्लाह तबारक व ताला के कलाम की आवाज़ सुनाई दी थी, तो उसको गोया तुम्हारी हर सांस जो है वो दरख्त है जिसमें से हज़रत मूसा अला नबीना वाली सलातो वसलाम को अल्लाह का कलाम सुनाई दिया जा रहा था। ये बहुत कीमती चीज़ है। और ये जो मद और जज़्र है, सांस आती है और जाती है, ये गोया जवाहिरात की लड़ी है। हमारी ज़िंदगी का एक एक लम्हा बहुत कीमती है। हयात का अनफासन तुअद्द फकुल्लमा मज़ा मिन्हा नफसन इंतकस्त मिन्हु जुज़ा, कि तुम्हारी जो है ज़िंदगी ये चंद सांसों का नाम है। ज़िंदगी क्या है, ये चंद सांस हैं जिनके मजमूए को ज़िंदगी का नाम दे दिया गया। इसलिए जहाँ एक सांस हमारी ख़त्म हुई, गोया इंतकस्त मिन्हु जुज़ा, हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा ख़त्म हुआ। इसलिए ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी के इन अवकात की कदर पहचाने, एक एक लम्हे को वसूल करने का अहतमाम करें। हमारा कोई सेकंड, कोई मिनट, कोई घड़ी ज़ाय और बर्बाद न हो, उससे हम फ़ायदा उठाएं आखिरत का या अपनी ज़रूरत की चीज़ें तो दुनिया की है उसका। लेकिन अगर कोई वक्त ऐसा गुज़रा जिससे हमने न तो आखिरत का फ़ायदा उठाया न दुनिया का, बस ऐसे ही उसको ज़ाय और बर्बाद कर दिया शहवत रानी के अंदर या ऐसे ही बेकार जो है, तो उस सूरत के अंदर ये हमारे लिए बहुत बड़ा खसारा है। दुनियावी एतबार से भी अगर फ़ायदा है तो कोई हरज की बात नहीं। जैसे फजूल कलाम से मना किया गया है, हज़रत हकीमुल उम्मत नवर अल्लाह मरकदहु फरमाते हैं कि एक कुंजड़ा है, यानी वो सब्ज़ी बेचने वाला, वो आवाज़ लगाता है, ले लो सब्ज़ी ले लो सब्ज़ी, दिन के अंदर 100 मरतबा वो जो है निकलता है तो आवाज़ लगाता है, तो उसकी आवाज़ चूँकि उसका एक उसकी एक तिजारत है, अपनी माल को निकालने के लिए ये बोल रहा है, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन अगर हम ये जुमला एक मरतबा भी बोलेंगे तो ये गोया हमने अपनी ज़िंदगी का इतना वक्त ज़ाय और बर्बाद कर दिया। हकीकत ज़रूरत के लिए जो बोला जाता है वो दुनियावी ज़रूरत हो तो भी कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन अगर ऐसे ही बिला ज़रूरत के जो लोग अपने अवकात को इस तरह गपशप के अंदर और लायानी के अंदर ज़ाया और बर्बाद करते हैं, हकीकत तो यह है कि वो जवाहरात जैसी एक कीमती चीज़ को यूं ही ज़ाया और बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए जो कल की मजलिस में मैंने अर्ज़ किया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मिन हुस्न इस्लामिल मरए तरकुहु मा ला यानी, एक आदमी के इस्लाम की खूबी ये है कि वह लायानी चीज़ को, यानी लायानी बात हो, लायानी काम हो या लायानी चीज़ें हो, बहरहाल उससे अपने आप को दूर रखे। ये एक मोमिन के ईमान का भी तकाजा है। वो जो आयत करीमा मैंने पढ़ी सूरह मोमिनून की शुरू की आयतें हैं, कद अफलहल मोमिनून अल्लदीन हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, के कामयाब हैं वो ईमान वाले, अफलहल फलाह वाले हैं। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये अरबी का लफ्ज़ फलाह एक ऐसा जामे लफ्ज़ है जिसमें दुनिया और आखिरत की तमाम खूबियाँ समाई हुई हैं। हमारी उर्दू ज़बान के अंदर कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो अरबी के इस लफ्ज़ फलाह के मफहूम को पूरे तौर पर अदा कर सके। वो जो तर्जमा करते हैं कामयाब, वो गोया एक मजबूरी के दर्जे का तर्जमा है। वैसे तो हकीकतन यूँ कहना चाहिए कि उस आदमी को दुनिया और आखिरत की खुशहाली हासिल है जो कद अफलाल मुम, वो ईमान वाले दुनिया और आखिरत की खुशहाली पाने वाले हैं, अल्लदीन हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाजों के अंदर खुशू का एहतमाम करते हैं, वल्लदीन हुम अनिल लगवे मौरिदून, और जो ऐसी बेकार लायानी चीज़ों से अपने आप को दूर रखते हैं। देखो क़ुरान करीम में एक ख़ास अंदाज़ है, जहां आप देखेंगे नमाज और ज़कात दोनों का तज़किरा हमेशा साथ किया गया है। पूरे क़ुरान का आप मुताला कर लीजिए, सिर्फ दो मकामात ऐसे हैं कि वहाँ नमाज और ज़कात के बीच में एक दूसरी चीज़ को दाखिल कर दिया गया। एक तो यहाँ कद अफलहल मोमिनून अल्लदीन हुम फी सलातिहिम खाशिऊन वल्लदीन हुम अनिल लगवे मौरिदून वल्लदीन हुम लिज़्ज़कात फ़ाइलून, नमाज और ज़कात का तज़किरा हुआ, बीच में वल्लदीन हुम अनिल लगवे मौरिदून, जो लोग लायानी चीज़ों से अपने आप को दूर रखते हैं। यही एक नुक्ता पैदा करने वालों ने बतलाया कि जो आदमी लगवियात में मशगूल होगा उसको अल्लाह तबरक ताला नमाज के खुशू से महरूम कर देंगे। ये खुशू के साथ इसका तज़किरा आया कि आजकल ये मोबाइल का कसरत से इस्तेमाल बिला ज़रूरत, ज़रूरत के तौर पर हो, आप साथ में लिए रहेंगे तो हर वक्त उसी में मशगूल रहेंगे। उसका एक आप इस्तेमाल करने के लिए एक निज़ाम बनाइए। मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे पास तीन मोबाइल हैं, एक तो छोटा सिर्फ बातचीत करने के लिए, किसी के साथ बातचीत करनी हो तो मैं उसी को इस्तेमाल करता हूँ। दूसरा जो है बड़ा है, जिसमें व्हाट्सएप है, चूँकि बहुत से अहबाब, आजकल डाक का निज़ाम भी पहले जैसा रहा नहीं, पहले बहुत उम्दा हुआ करता था, तो अब डाक के बजाय लोग अपना पैगाम जो है इसके ज़रिए से भेजते हैं, ख़ास करके गैर मुल्की। अब तो मुल्क के अंदर भी मुसीबत आ गई, पहले तो आम तौर पर एक ख़त हमने लिखा तो करीब के इलाके में दूसरे दिन तो यकीनी तौर पर पहुँच जाता था, और वहाँ दिल्ली वगैरह ऊपर के इलाके में जो है तीसरे दिन लाजिमन पहुँच जाता था, और अब तो वो सारा निज़ाम भी जो है ऐसा ही जो है मुख्तल सा हो गया। तो अब बहुत से अहबाब उसके लिए ये रखा, लेकिन उसके इस्तेमाल में मैंने अपना एक निज़ाम बनाया, उसको साथ तो रखता हूँ सफ़र में, और वहाँ घर के क़याम में जब मैं नहीं रखता, घर पर रखता हूँ, जब आया फारिग हुआ वक्त है तो उसको खोलूँगा और खोल करके देख लूँगा क्या किसका पैगाम है, और उसी वक्त उसका पढ़ कर जवाब दे दूँगा, फिर बंद करके या इसे घर में है तो रख देंगे, बार बार उसको वहाँ नहीं। और तीसरा जो है वो सिर्फ जो है कुरान पाक, उसमें मैंने वो क्या कहते हैं सिम कार्ड, वो भी डाला नहीं है, जिसमें मैं कुरान पढ़ता हूँ, वजीफ़े पढ़ता हूँ, हिज़्बुल आज़म वगैरह या किताबें वगैरह जो चीज़ मुताले के अंदर रखी हुई हैं, तो उसमें सिम कार्ड नहीं है। जब से नया लिया है तभी उसमें सिम कार्ड दाखिल ही नहीं किया, बस उसको खालिस इस काम के लिए इस्तेमाल करता हूँ। तो मैं एक अपना एक मामूल इसलिए बता रहा हूँ कि हमें भी अपना एक निज़ाम बनाना चाहिए, या अपने अवकात को हम सही तरीके से वसूल करने वाले बने। कोई ये मोबाइल जो है माशाल्लाह बहुत 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 ऐसी चीज़ है, काम की चीज़ है, लेकिन हर काम की चीज़ कैसी अच्छी चीज़ क्यों ना हो, उसको अगर आप गलत इस्तेमाल करेंगे, मिस यूज़ करेंगे, तो उससे बजाय फ़ायदे के नुकसान होगा। खाने से बढ़कर और कौन सी अच्छी चीज़, लेकिन खाना ज़रूरत से ज़्यादा खा लेंगे तो आदमी मर जाएगा। पानी के ऊपर आदमी की ज़िंदगी है, पानी ज़रूरत से ज़्यादा पी लेगा तो वो उसको हलाकत का ज़रिया बन जाएगा उसके लिए। तो हकीकत तो ये है कि हमें अपने ज़ात के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए हर मौके के उसके इस्तेमाल में। ये नई इजादात हैं, नई इजादात में जहाँ फ़ायदा है वहाँ नुकसान बही माना है, कि कोई आदमी अगर उसको जो है गलत तरीके से इस्तेमाल करता है तो यही चीज़ उसके लिए बहुत ख़तरनाक हद तक मुज़ीर और नुकसानदेह बन जाती है, लेकिन अगर सही इस्तेमाल करेगा तो मुफीद और कारामद है। तो हज़रत क़ारी हकीमुल इस्लाम क़ारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये असल तो आदमी के दिल की इस्लाह की ज़रूरत है। ये जितने भी ईजादें हुई, कि भाई ये सवारियाँ नई नई पैदा हुई, कारें और कारें भी तेज़ रफ्तार, हवाई जहाज, ये सब इस तरह और दूसरे आलात, तो इन सारे आलात और इन सारी चीज़ों का इजादात का इस्तेमाल करने वाला कौन है? इंसान है। तो ज़रूरत पहले ये है कि उस इंसान के कल्ब को दुरुस्त कर लिया जाए। उसके कल्ब की अगर इसलाह हो गई तो उसकी उस इसलाह के बाद ये सारी चीज़ें उसके हक में रहमत है। वो उसको सही तरीके से इस्तेमाल करेगा, गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करेगा। और अगर कल्ब की इसलाह नहीं हुई तो भाई यही कार है, यही ये है, उसी कार को चोर जो है इस्तेमाल करेगा, या उसको 100 मील दूर जाना है, वो आध घंटे में वहाँ पहुँच करके चोरी करके आ जाएगा। भैया यही जदीद आलात जो इन गलत तरीके से इस्तेमाल करने वालों को उनके इस काम में कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। तो हकीकत तो ये है कि ज़रूरत इसकी है कि जिस हाथ में इसको दिया जा रहा है उस हाथ को आप पहले ठीक कर लें, उसकी इसलाह कर लें। हमें भी अपने कल्ब की इसलाह करने की ज़रूरत है। उसके बाद इन आलात को अगर कोई आदमी इस्तेमाल करता है तो ये आलात उसके हक़ में रहमत साबित होंगे, वरना जो है उसके लिए दुनिया और आखिरत की बर्बादी का ज़रिया बन जाते हैं। तो बहरहाल मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दी है कि हम अपने अवकात की कदर व कीमत पहचानें। इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिन हुस्न इस्लामिल मरे तर्कुहु मा ला यानी। एक इंसान के इस्लाम की खूबी यह है कि वो लायानी चीज़ को छोड़ दे। लायानी कल मैं बतला चुका हूँ कि जिससे में न तो दुनिया का फ़ायदा हो न आखिरत का फ़ायदा हो। और अल्लाह ने यह वक्त दिया है, बड़ा कीमती है, एक एक लम्हा कीमती है। इसकी कीमत का आप अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं, अबू दाऊद शरीफ के अंदर हज़रत उबैद इबन खालिद रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दो सहाबियों के दरमियान मुआखात कराई थी, दोनों को एक दूसरे का भाई बनाया था। उनमें से एक का जो है जिहाद के अंदर शहादत में इंतकाल हुआ, शहीद हुआ। दूसरा उसके एक महीने के बाद आम मौत जो आती है उसके मुताबिक उसकी मौत आई, आम मौत मरा। उसकी तजहीद व तकफीन के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा तुमने अपने भाई के लिए क्या दुआ की? ये जो दूसरे का इंतकाल हुआ ना, उसके मुतालिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, तुमने अपने भाई के लिए क्या दुआ की? तो सहाबा ने क्या अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, हमने दुआ की कि अल्लाह तू इसको उस पहले, उसका जो भाई एक महीने पहले शहीद हुआ है, उसके मर्तबे को पहुँचा दीजिए। तो ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि भले उसके बाद एक महीने तक ये ज़िंदा रहा, उसकी नमाजें, उसके वामाल क्या होंगे? उस जाने वाले और इसके दरमियान इतना ही फ़र्क है मर्तबों का जैसा कि ज़मीन और आसमान के दरमियान। हालांकि वो पहले वाला शहीद था और ये शहादत की मौत इसको नहीं आई, आम मौत आई, लेकिन अल्लाह ने उसको एक महीना मज़ीद दुनिया में रहने का मौका दिया था। तो गया उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये एक महीना उसको मिला, उसमें जो उसने आमाल किए वो कहाँ गए? वो आदमी उसके मकाम को नहीं पहुँच सकता। तो हकीकत तो ये है कि अल्लाह तबरक तआला ने हमें जो मौका दिया है, हमें उसका ख़ास एहतमाम करना चाहिए, उसको वसूल करने का एहतमाम। चलते फिरते कोई काम ना हो, चलते फिरते आदमी जो है तस्बीह रखे, उसके जो है ज़बान पर अल्लाह का ज़िक्र होना चाहिए। जैसे रिवायत है तिर्मिज़ी शरीफ में, एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि अल्लाह के रसूल, इस्लाम के अहकाम तो बहुत सारे हैं, उसमें फ़राइज़ का तो अहतमाम करना ही है, नवाफिल के अंदर भी बहुत सारी किस्में हैं, मुझे आपको ऐसा अमल बतला दीजिए कि जिसको मैं मज़बूती के साथ थाम लूँ, चलते फिरते भी गोया करता रहूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया, ला यज़ालु लिसानुका रतबन बिज़िक्रिल्लाह, कि तेरी ज़बान अल्लाह की याद से तरोताज़ा रहनी चाहिए, गोया हर वक्त तुम्हारी ज़बान पर अल्लाह का जिक्र हो। चलते फिरते कोई और काम, दूसरे काम में मशगूली नहीं है, तो आदत ऐसी बना लो। ये सूफिया के यहाँ पास अनफास का जो बतलाया गया जाए सांस को, कि भाई अंदर जाती है बाहर आती है, तो उसके अंदर जिक्र को शामिल कर लिया गया। ये क्यों? सूफिया के यहाँ एक इस्तिलाह है निज़ामुल औक़ात की, गोया आदमी अपने वक्त को ऐसा मुरतब बनाए कि एक एक मिनट को वसूल करने वाला बन जाए, एक लम्हा भी उसका ज़ाय और बर्बाद न हो, हर वक्त गोया उसका काम, वो काम में लगा हुआ हो, बेकार न हो। तो हमसे शरीयत यही चाहती है कि हमारी ज़िंदगी के ये कीमती अवकात जो हैं, हम उनको वसूल करने का अहतमाम करें। बुज़ुर्गों के यहाँ इस चीज़ की तरफ ख़ास तवज्जो दी जाती थी, अगर कोई आदमी जो है ज़रा भी गफलत में रहा तो वो अपने लिए उसको गोया बड़ी मुसीबत समझता था। एक बुज़ुर्ग जो है एक मर्तबा एक दूसरे अपने साथ रफ़ीक की मुलाकात के लिए असर के बाद उनके मकान पर तशरीफ़ ले गए, तो घर वालों पूछा, भाई हैं? तो कहा वो आराम कर रहे हैं। इनकी ज़बान से ये जुमला निकला, ये कोई आराम का वक्त है? और फिर वो वापस लौट गए। वापस लौट गए चूँकि बड़े आदमी थे, घर वालों ने फौरन उनके पीछे आदमी दौड़ाया कि अगर आप फरमावें तो हम इनको जगा दें। वो आदमी बड़ी देर के बाद आया, वो कहने लगा, क्या करता मैं उनके साथ पीछे पीछे लग रहा हूँ, वो तो अपने नफ्स को जो हैं वो बराबर मलामत कर रहे थे कि तुझे किसने कहा था कि ये जुमला बोले कि ये सोने का वक्त है? आज सोने आदमी के आराम को आदमी खुद समझता है, आदमी को अगर ज़रूरत आराम की हो तो वो कर रहा है, तूने ये जुमला अपनी ज़बान से क्यों कह दिया कि क्या ये सोने का वक्त है? मैं अब तुझे ये सज़ा दूँगा कि मैं एक साल तक कभी लेटूंगा नहीं, इल्ला एक सख्त बीमार हो जाऊं और माजूर सा हो जाऊं। गोया इतना एक जुमला बोलने पर, और वो आदमी तो कहा मैं तो उनसे कोई बात ही नहीं कर सका, वो तो बस यही बोल रहे थे यहाँ कब्रिस्तान में पहुँचे, मैं उनकी ज़बान से वो अपने आप को इसी तरह मलामत कर रहे थे, वो सुनकर आकर उसने इत्तला दी। तो हकीकत तो ये है कि गोया एक एक जुमले के मुतालिक वो अपने मुतालिक क्या है निगरानी रखते थे। हज़रत मंसूर इब्न मोतमिर बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, बुखारी शरीफ की रुवात के अंदर जो रिवायत है वो 40 साल तक ईशा की नमाज के बाद जो है उन्होंने कभी गुफ्त बातचीत नहीं की। हज़रत रबी इब्ने खैसुम रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़ास शागिर्दों में से थे और ज़ोहद व वरा में उनका मकाम सबसे ऊँचा था। खुद हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनसे बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। जब भी उनको देखते थे तो इन कहते थे लव रा का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाहब्बा का, कि अगर अल्लाह के रसूल तुमको देखते तो ज़रूर तुमसे मोहब्बत फरमाते। वो जब आते थे तो हज़रत इब्ने मसूद अपने करीब बिठाते थे। उनकी आदत थी कि वो 20 साल तक सुबह को जब बैठते थे तो अपने पास दवात कलम और जो है कागज़ रखते थे, जो बोलते थे वो लिख लेते थे और शाम को बाकायदा अपना मुहासबा करते थे, ये जो कुछ मैंने बोला है इसमें से कौन सा ज़रूरी था और कौन सा गैर ज़रूरी। ये इतना ज़्यादा इनके यहाँ अहतमाम था। तो हकीकत तो ये है, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक आपने मिश्कात के अंदर पढ़ा होगा, एक मरतबा वो अपनी ज़बान को मरोड़ रहे थे और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देखा, ये क्या कहा, हादल लदी औरदनी अल मवारिद, इसी ने मुझे मुसीबतों में डाला है। और उनके मुतालिक ये भी है कि वो अपने मुँह में कंकर रखते थे, कंकर, ताकि बिला ज़रूरत कोई बात बोलने की नौबत ना आवे, लॉकिंग सिस्टम। उस इब्ने अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा शख्स अपनी ज़बान के इस्तेमाल के मामले में इतनी ज़्यादा एहतियात बरत रहा है, तो हमें क्या इतनी एहतियात करनी चाहिए, लॉकिंग सिस्टम की ज़रूरत तो हमको है। तो बहरहाल ये फजूल बातें अपनी ज़बान से निकालना, ये वाकया यह है कि बड़ा ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा उससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। हज़रत जो है अबुल कासिम ये इमाम अबू सौर रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं और हज़रत सिर्रे सिक्ती रहमतुल्लाह अलैह के भांजे हैं। उनका एक मकूला है, अलामत व एराज़िल्लाह अनिल अब्द अन युशग़िलहू फ़ी मा ला यानी, अल्लाह ताला की किसी बंदे से नाराज़ और होने की अलामत ये है कि उसको अल्लाह ताला लायानी में मशगूल कर दे। किसी का लायानी में मशगूल होना ये गोया इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला उससे नाराज़ है। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। हमारे अकाबिर के यहाँ एक एक लम्हे की कदर व कीमत हुआ करती थी। हज़रत इब्राहिम अदहम रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मवाइज़ में वाक़िया है, एक मरतबा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम उनकी मुलाकात के लिए आए। इन्होंने मुसाफा किया, सलाम मुसाफे के बाद ये अपनी तस्बीह लेकर पढ़ने में बैठ गए। हज़रत खिज़र वहीं बैठे हैं, ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अपने दिल में सोच रहे हैं कि लोग तो मेरी मुलाकात की तमन्नाएँ करते हैं, ज़िंदगी गुजर जाती है और उसको उनकी तमन्ना पूरी नहीं होती, और मैं खुद इनकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और ये तो मेरी तरफ ध्यान भी नहीं देते, बड़े बेफिक्र मालूम होते हैं। चुनांचे उन्होंने कहा भी कि मैं खिज़र हूँ, लोग तो मेरी मुलाकात की तमन्ना करते हैं और मैं खुद आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और आप जो है मेरी तरफ़ ध्यान भी नहीं दे रहे, मेरी तरफ तवज्जो नहीं करते। तो जवाब में क्या फरमाते हैं, आपकी मुलाकात की तमन्ना वो करे जिसको अल्लाह से फुर्सत हो, मुझे तो अल्लाह से फुर्सत है नहीं। तो हकीकत तो यह है कि ये वो हजरात थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की कीमत को पहचाना। हम लोग तो मामूली मामूली बातों के अंदर, मामूली मामूली चीज़ों के अंदर, बहसों में अपने घंटों को ज़ाय और बर्बाद कर देते हैं। हज़रत मिर्ज़ा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह हमारे सिलसिले नक्शबंदिया के बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुजरे हैं, हमारे अकाबिर में से हैं, उनके मुतालिक लिखा है कि एक मरतबा दो तालिबे इल्म उनकी खिदमत में आए थे उनसे बैत होने के लिए। बल्ख के रहने वाले थे, बल्ख ये अफ़ग़ानिस्तान के अंदर एक बड़ा शहर है। तो ये जिस मस्जिद में हज़रत मिर्ज़ा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह का क़याम था, उस मस्जिद में पहुँचे और नमाज के का वक्त था, वज़ू करने के लिए ज़ोहर के ऊपर बैठे। उन्होंने कभी हज़रत मिर्ज़ा साहब रहमतुल्लाह अलैह को देखा नहीं था, पहचानते नहीं थे। अब ये हौज पर बैठने के बाद आपस में बहस कर रहे हैं, एक दूसरे से कहता है ये हौज बड़ा है या हमारे بلخ کا حوض ہے وہ بڑا ہے,
تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ یہ بڑا ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ وہ بڑا ہے.
اسی
حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں قریب میں تھے, ان کی یہ باتیں سن لی. نماز کے بعد فراغت کے بعد وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے, پوچھا کون ہو, کہاں سے آئے ہو, کہا طالب علم ہیں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں, بیعت ہونا چاہتے ہیں. اچھا وہ تم نے وہ فیصلہ کر لیا وہ دعا کون سا بہت بڑا ہے؟ تو شرمندہ ہو گئے, کہا تمہاری اس بحث سے معلوم ہوا تم میں دو جو ہے برائیاں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ تم فضول کاموں میں اپنے وقتوں کو ضائع کرتے ہو. اگر اگر یہ فیصلہ ہو بھی جاوے کہ یہ بڑا ہے یا وہ بڑا ہے تو اس سے تمہارا کیا فائدہ, آخرت کا کوئی فائدہ ہے, دنیا کا کوئی فائدہ ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہارے مزاج کے اندر احتیاط اور تحقیق نہیں, دونوں میں سے ایک بغیر کیا تم میں سے کسی نے بھی یہاں اور وہاں کے حوض کو ناپا ہے؟ ناپے بغیر جو ہے ایک یوں کہتا ہے کہ یہ بڑا ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ وہ بڑا ہے, اور یہ بھی مومن کی شان نہیں ہے. تو گویا حضرت نے کہا جاؤ پہلے وہاں جاؤ, پہلے اس کو ناپو اور پھر آ کر کے اس کو ناپو اور پھر فیصلہ اس کے بعد بیعت کروں. یہ تنبیہ تھی حضرت کی طرف سے. تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم ایسی جو ہے فضول بحثوں میں اپنا اوقات کو ایسا ضائع کرتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. ہمارے بزرگوں کے ہاں اپنے اوقات کی وصولیابی کا کیسا اہتمام تھا, وہ ایک ایک لمحے کی قدر پہچانا کرتے تھے. حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مولانا عاشق الٰہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الخلیل میں لکھا ہے, معمولات اور اوقات کی پابندی کا اتنا اہتمام تھا, کسی بھی حالت میں ہوں, سفر میں ہوں, حضر میں ہوں, بیمار ہوں, تندرست ہوں, کبھی اس میں ذرہ برابر بھی فرق آتا نہیں تھا. ہمارا حال تو یہ ہے کہ معمولات بھی معمولی معمولی آزار کیا عذر کے بغیر بھی چھوڑ دیتے ہیں, اور معمولات کا جو اہتمام ہونا چاہیے وہ ہوتا ہی نہیں, پھر شکایتیں کرتے ہیں کہ کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. کہا آپ جب معمولات کا اہتمام ہی نہیں کریں گے تو فائدہ کیا نظر آئے گا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے. حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ حضرت شاہ عبد القادری صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سید صاحب بیعت تو تھے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب سے, لیکن ان کو دیکھ کر حضرت شاہ عبد القادری صاحب نے ان کو مانگ لیا تھا بڑے بھائی سے کہ مجھے دے دو سید, ان کی میں تربیت کروں گا. کیا ٹھیک ہے لے جاؤ. تو حضرت شاہ عبد القادری صاحب نے جہاں جس مسجد میں رہتے تھے ایک جگہ متعین کر دی, یہاں اپنے معمولات کو پورا کرو. تو سردی ہو, گرمی ہو, بارش ہو, تو بھی اس جگہ سے ہٹتے نہیں تھے, وہیں اپنے معمول کو پورا کرنا. یہ ان حضرات کا مزاج تھا. تو حقیقت تو یہ ہے ان چیزوں کا اہتمام. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اوقات کا کی پابندی اور اوقات کو کا اہتمام, اس کی اہمیت ایسی آپ کے مزاج کے اندر گویا رچی اور بسی ہوئی تھی کہ ہر کام مقررہ وقت پر ہوتا تھا, ہر وقت گھڑی کے اوپر نظر ہوتی تھی کہ یہ فلاں وقت ہے, فلاں کام کا وقت ہے. ایک جگہ میں نے ان کے جہاں وہ حضرت کے ملفوظات انہوں نے جمع کیے اس کے مقدمے میں ہے کہ کوئی آدمی اگر 15 سال پہلے حضرت کی خدمت میں آیا ہو اور اس کو مثلاً 10 بجے آیا اور 10 بجے حضرت کو فلاں کام کرتے ہوئے دیکھا, مان لیجئے کہ خطوط کے جوابات لکھتے دیتے ہوئے, تو 15 سال کے بعد آئے گا تو بھی 10 بجے اسی کام میں مشغول پائے گا. یہ معمولات کا ان کے یہاں اہتمام تھا. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے کہ حضرت علمی مشاغل کے اندر وہ حضرت نے شام کا کھانا بھی چھوڑ دیا تھا. حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے وہ شام کے کھانے کی وجہ سے بڑا حرج محسوس ہوتا تھا کہ وہ کھانے میں مشغول ہوں گا تو پھر یہ مطالعہ رہ جائے گا. یہ بھی ہمارے بزرگوں کا ایک خاص وصف رہا ہے کہ وہ جو ہے حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ یہ کھانے کے اوقات بڑے بھاری معلوم ہوتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارا علمی مشغلہ اتنی دیر تک کے لیے موقوف ہو جاتا ہے. اور وہ حضرات ایک ایک لمحے کی قدر, حضرت حافظ ابن حضرت عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ سلیم رازی رحمۃ اللہ علیہ ان کے متعلق لکھا ہے کہ وہ تصنیف و تعلیف کا کام کرتے تھے. اس زمانے کے اندر وہ लकड़ी के कलम हुआ करते थे, वो छील कर उसकी तैयार किया जाता, उसका खत बनाया जाता था, यानी उसकी नोक ऐसी कि जिसके ज़रिए से आसानी से लिखा जा सके। वो खत चूँकि वो लकड़ी के होते थे, दो चार पाँच सफ़े लिखने पर उसमें फ़र्क आ जाता था उसकी वो नोक में, उसको दोबारा छील करके ठीक करना पड़ता था, उसको खत बनाना कहते हैं। तो वहाँ जब चंद सफ़े लिखने के बाद जब उसका खत बनाना पड़ता, उसकी ज़रूरत पेश आती थी, तो खत बनाने के दौरान भी वो सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे, ताकि ये वक्त भी, हालांकि अगर नबी पढ़ें तो अभी ये खत तो ज़रूरत के लिए बना रहे हैं, उसी तालीम के लिए, सवाब तो फिर भी जारी है, लेकिन ज़बान फिर भी फारिग नहीं रहनी चाहिए। ये हमारे हज़रत मियाँ जी नूर मोहम्मद साहब जंजानवी रहमतुल्लाह अलैह, जो हज़रत हाजी इमदादुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के पीर और शेख गया थे, उनके मुताबिक हमारा हज़रत फरमाते नस्बत इतनी ऊँची थी कि वो कुरान बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन कुरान पढ़ाने ही के अंदर उनको साहिब नस्बत बना देते थे, इतने ऊँचे। तो उनका हाल ये था कि वो बाज़ार कुछ ख़रीदने के लिए गए, इधर उधर तो कोई जान ही नहीं, थैली होती थी पैसों की, तो जब कोई बात कोई चीज़ ख़रीद ली तो खुद पैसे गिनने की झंझट में पड़ने के बजाय वो थैली रख देते, भाई तुम अपने पैसे जितने होंगे ले लो, वही उतनी देर वो अपने अल्लाह की तस्बीह वगैरह में मशगूल रहते थे। तो एक मरतबा ऐसा हुआ कि एक चोर आया, किसी को पता चल गया कि ये थैली इनके पास जो रहती है उसमें उनके पैसे होते हैं, वो झपट करके, वो चक्का था, वो झपट करके ले गया। लेकिन हुआ यह कि फिर वो अब लेके भाग तो गया, लेकिन उसको रास्ता ही नहीं मिल रहा है, बस वो इस गली में से उस गली में, उस गली में से बाहर, शहर से निकल ही नहीं रहा, परेशान हो गया। किसी ने कहा कि भाई ये तो जिसकी थैली है, जब तक तू उसको उनको वापस नहीं पहुंचाएगा तुझे रास्ता नहीं मिलेगा। तो वहाँ गया, दरवाज़ा खिचखिचाया, आपकी जय बोले वो मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ, तो मुझे तो रास्ता नहीं मिल रहा है इसकी वजह से। तो बहरहाल मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ इन हजरात के यहाँ वक्त की इतनी अहमियत थी, इतनी कदर कीमत थी। अदर शेख रहमतुल्लाह अलैह की बात कर रहा था कि वो जो है ये इल्मी मशगूली की वजह से शाम का खाना, हज़रत फरमाते मेरी एक बहन थी तो मैं अपनी किताब देखता रहता था, अपना इल्मी काम करता था, वो लुक्मे बना करके मेरे मुंह में दिया करती थी। उस बहन का इंतकाल हो गया तो कहा मेरी कोई नाजबरदारी करने वाला रहा नहीं, तो फिर मैंने वो शाम का खाना ही छोड़ दिया। उसके बाद वो एक ही टाइम खाते थे दोपहर को, तो 24 घंटे में एक मरतबा खाते थे, उसमें भी मशगूली, इल्मी मशगूली की वजह से वो भी कभी भूल जाते थे। दूसरे दिन यानी मसलन आज दोपहर को खाया, कल दोपहर को वक्त आता था, याद नहीं रहता था इल्मी मशगूली की वजह से, तो उस पर कभी 30 घंटे गुजर जाते थे अगले दिन के खाए हुए। असर के वक्त जब एक ज़्यादा नकाहत और ज़ौफ़ महसूस करते तो सोचते, तब ख्याल आता कि वो आज दोपहर का खाना खाया नहीं। तो बहरहाल मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारे अकाबिर के यहाँ इन अवकात की वसूलियाबी का बहुत ज़्यादा अहतमाम था। हमें अल्लाह तबरक तआला ने जो मौका दिया है, ज़रूरत है कि हम उसको वसूल करने का अहतमाम करें और ऐसी बेकार फजूल बहसों से, बेकार कामों से अपने आप को दूर रखें। ये फजूल बात जो है ना, उससे भी डॉक्टर अब्दुल हय साहब आरिफ़ी फरमाते हैं, एक तो बदनिगाही के मुतालिक तो हज़रत हकीमुल उम्मत नवर अल्लाह मरकदहू के इसमें हैं, मकातिब के अंदर किसी ने सवाल किया था बदनिगाही के मुतालिक, तो उसके मुतालिक फरमाते हैं कि उसकी वजह से ताआत का नूर सलब हो जाता है। लेकिन ये फजूल बातों के मुतालिक डॉक्टर अब्दुल हय साहब फरमाते हैं कि जो आदमी फजूल बात करता है उसकी वजह से भी इबादत का नूर दिल में बाकी नहीं रहता, फजूल गुफ्तगू की वजह से। इसलिए अपने आप को इससे बचाने की ज़रूरत है और इसका अहतमाम हो। अल्लाह तबरक तआला ने ऐसी कीमती ज़िंदगी अता फरमाई है, जितना भी ज़्यादा उसको वसूल कर सकते हैं कोशिश की जाए। आप किसी इल्मी काम में मशगूल हैं, ये भी एक हमारे बुज़ुर्गों के यहाँ एक तरीक़ा ये भी रहा कि औकात को तो वसूल करते ही थे, लेकिन फिर ये है कि कौन से काम को तरजीह दी जाए, कौन सा काम ऐसा है जिसमें ज़्यादा सवाब मिलता है उसको पहले तरजीह देते थे, उसको करने का अहतमाम करते थे। ये जैसे कि किसी जगह अल्लाह ने पैसा दिया हो तो आदमी सोचे ना कि ये पैसा मैं कहाँ खर्च करूँ तो ज़्यादा सवाब मिलेगा, तो ऐसे अवकात को कहाँ मैं इस्तेमाल करूँ तो ज़्यादा मुफीद और कारामद है। वैसे तो काम के मुफीद कामों में ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन उसमें भी ये सोच गया पेश नज़र रहती थी और अहतमाम रहता था कि जो ज़्यादा मुफीद काम हो उसके अंदर उसको गया उसको इस्तेमाल किया जाए। बहरहाल अल्लाह तबरक तआला ने हमें जो मौका अता फरमाया है उससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और अपने अवकात को इस तरह यूं ही ज़ाया करने से कोशिश यही हो कि ज़्यादा से ज़्यादा बचाएँ अपने आप को। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक और सआदत अता फरमाए। दुआ कर लीजिए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक व तबारक इस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तरदा बिअदद मा तुहिब्बु व तरदा रब्बना ज़लमना अन्फुसना وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تو نے اتنی قیمتی زندگی جو عطا فرمائی ہے اس کے ایک ایک لمحے کی قدردانی اللہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، لغویات اور لایانی سے ہماری حفاظت فرما، اللہ ہمیں خاص طور پر اس کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ ایک تجربے کی بات بتلاتا ہوں، صبح جہاں اور دعائیں کرتے ہیں فجر کے بعد، ایک دعا یہ بھی روزانہ کر لیا کریں کہ اللہ یہ دن تو نے عطا فرمایا ہے، آج کے دن کے ان اوقات کو میں وصول کرنے والا بنوں، لغویات سے اور لایانی سے میری حفاظت فرما۔ یہ دعا کی عادت ڈال لو، انشاءاللہ اس سے بھی بہت فائدہ پہنچتا ہے۔